Welcome to First Post Masterclass, our brand new podcast series where elite athletes break down their craft for you. My name is Shantanu Srivastava, and joining me in this episode is boxer Vikas Krishan. Vikas competes in 69kg category and has represented India twice at the Olympics. Today, he'll explain the science behind his brutal sport. विकास, सबसे पहले तो स्वागत है आपका फर्स्ट पोस्ट के साथ जुड़ने के लिए।
जी
विकास, जैसा कि मैंने बताया ये एक मास्टर क्लास है, तो इसमें हम आपसे बॉक्सिंग की टेक्निक के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे हुई आपकी और आपके हीरोज कौन थे बॉक्सिंग में, कैसे आना हुआ आपका बॉक्सिंग में?
देखिए, मेरे फादर ये चाहते थे बचपन से कि मैं स्ट्रांग बनूं, मतलब बॉक्सर से यूजुअली बॉक्सर की जो हैबिट है कि वो स्ट्रांग होंगे, अच्छी उनके पास मसल्स होंगे, अच्छी बिल्ड क्वालिटी होगी, तो इस तरीके से मेरे फादर चाहते थे और उन्होंने मेरे को एडमिट करवा दिया बॉक्सिंग के अंदर। उस टाइम मैं कोई डिसीजन लेने के लायक नहीं था, मैं 10 साल का था उस टाइम।
अच्छा
जी,
तो आप भिवानी बॉक्सिंग क्लब में आप 10 साल के?
जी, भिवानी बॉक्सिंग क्लब उस टाइम साई में हमारा बॉक्सिंग सेंटर था, एक ही भिवानी के अंदर बॉक्सिंग सेंटर था साई के अंदर।
तो ये तो बहुत लेजेंडरी बॉक्सिंग क्लब है, अपने विजेंद्र, अखिल, आप और आपके पहले भी काफी सारे बॉक्सर्स उधर से निकले हैं, तो उधर जाके कैसा माहौल था, कैसा लगा आपको उधर, आपके ग्रोइंग अप इयर्स कैसे थे उधर?
नहीं, स्टार्टिंग में जैसे गया, जैसे एक नए बच्चे को ट्रीट करते हैं उसी तरीके से मेरे को यूजुअली बच्चों ने ट्रीट किया, इस तरीके से हमारी फाइट्स होती थी। मतलब मेरे को बहुत डर लगता था शुरू में, क्योंकि पंचेज लगते थे, बहुत हार्ड पंचेज लगते थे, और मैं इस तरीके से मैं स्पोर्टिंग फैमिली से बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट एक्चुअल के अंदर जो आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ ना, उसकी स्टार्टिंग मेरी मॉम ने की थी।
अच्छा,
मतलब कभी मेरे को मार पड़ती थी फाइट के अंदर या कभी मैं थक जाता था इस तरीके से, तो मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे को एक मोटिवेट किया है। अच्छा। और मेरी मम्मी एक बहुत हार्ड टाइप वुमन है, जैसे कभी मान ले बाई चांस मेरे को फाइट के अंदर लग गई, जैसे खून भी आगे कहीं या फिर मेरे को सूजन होगी कहीं पे, तो मेरी मम्मी ने कभी मेरे को ये नहीं कहा कि भाई कल नहीं जाना, तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आग लग गई तो कल हम मारेंगे। इस तरीके से मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे को मोटिवेट किया, जो बहुत कम आज के दिन में देखूं, बहुत कम लेडीज के अंदर ऐसी किलिंग इंस्टिंक्ट होती है जो मेरी मम्मी ने, क्योंकि एक बच्चा अपनी मम्मी से ज्यादा कॉन्टेक्ट के अंदर रहता है, ज्यादा टाइम अपने मम्मी के साथ बिताता है, फादर तो जॉब पे चले जाते हैं, तो इसलिए मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे को अच्छे से मोटिवेट किया और मैं आज जो इस लेवल में पहुंचा हूँ ना, मतलब उससे बहुत बड़ा हाथ मेरी मम्मी का, सिर्फ उन्होंने मेरे को मोटिवेट करने की वजह से। नहीं, कई बार मन में ये आती थी कि भाई मैं छोड़ दूं या मैं पढ़ लूं या मैं और कोई चीज देख लूं, तो मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को कभी इस डिसीजन से हटने नहीं दिया कि भाई हम छोड़ लें।
कोई एक आपको, अगर कोई नया बॉक्सर होता है तो क्या उसमें एक पर्टिकुलर माइंडसेट चाहिए होता है बॉक्सर बनने के लिए?
जी देखिए, काफी चीजें इसके अंदर बहुत बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जिसको मैं मानता हूँ वो आपकी फैमिली है।
जी
ठीक है, आपकी फैमिली आपको उस चीज के लिए पुश करे, लाइक मैं अपने बच्चों को बॉक्सिंग कराना चाह रहा हूँ अभी, तो मेरे बच्चे अभी, मेरा बेटा 1-6 का है, एक मेरा बेटा 5 का है, एक मेरी गुड़िया 4 की है, तो मैं अब उनको बॉक्सिंग के अंदर डालने के लिए ये नहीं कि मैं उनके ऊपर कोई चीज थोप दूंगा, मैं उनको ऑप्शंस दूंगा, मैं उनको मेरे तरीके से उनको पुश करूंगा बॉक्सिंग के लिए कि भाई उसको देखो, ताकि मैं उनके अंदर एक क्रिएटिविटी, एक क्रेज बनाऊंगा बॉक्सिंग का। इसके बाद ये मैंने अपना इन्फ्लुएंस दे दिया, उसके बाद उनका फ्रेंड सर्कल कैसे उनको इन्फ्लुएंस करेगा, फ्रेंड सर्कल्स को, अब सपोज फ्रेंड्स के अंदर ज्यादा फुटबॉल की बात होती है तो मेरे बच्चे ऑब्वियसली फ्रेंड्स की बात ज्यादा सुनेंगे, ठीक है, तो सेकेंडली फ्रेंड्स होता है, और थर्डली बच्चे का इनर माइंडसेट भी होता है जो बाय बॉर्न होता है ना, बाय बॉर्न फाइटर होता है। सपोज मैं और मेरे भाई बॉक्सर हैं, तो मेरे बच्चे के अंदर वो इनबॉर्न फाइटिंग है, मतलब किसी चीज से हार न मानना, तो इस तरीके से इनबॉर्न है उनके अंदर ये चीजें, तो मेरे को लगता है मैं अपने मतलब इसके चीज के अंदर कामयाब रहूंगा, उनका मन में बना लूंगा बॉक्सिंग के लिए।
और ट्रेनिंग का बॉक्सिंग में बहुत बड़ा रोल रहता है, आप बताइए कि अपने जो बैलेंस होता है वेट ट्रेनिंग में और स्किल ट्रेनिंग में, वो एक आइडियल बैलेंस कैसे आप अचीव करते हैं?
देखो, स्टार्टिंग में तो मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता होता कि भाई, मतलब इंडिया में तो आज तक मैंने नहीं देखा कि भाई स्टार्टिंग में कोई बच्चा बताए भाई मेरे को कितनी वेट ट्रेनिंग करनी है या कितनी क्या करनी है। हमारे इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, कि जो पुराने भी जो बॉक्सर्स हैं जो फुल एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जिनको 15 साल हो चुके, 20 साल हो चुके बॉक्सिंग करते करते, वो अभी भी कोचिज के शेड्यूल को फॉलो करते हैं। उन्होंने कभी भी कोचिज को, मैंने आज तक किसी भी बॉक्सर को ये कहते नहीं सुना कोचिज को कि मैं वेट ट्रेनिंग के अंदर ये वाले एक्सरसाइज को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, मैं ये वाले एक्सरसाइज आपकी कम करूंगा। तो यू नो कि हम है ना ब्लाइंडली कोचिज को फॉलो करते हैं, तो मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि भाई बच्चे कोचिज को इतना फॉलो ना करें, वो देखें भाई प्रोफेशन के अंदर क्या वर्ल्ड चैंपियंस हैं, किस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग की। आज के दिन नेट सबके पास है, यूट्यूब गूगल सबको चलाना आता है, हम सब वहाँ ढूंढ सकते हैं वर्ल्ड चैंपियंस का क्या ट्रेनिंग शेड्यूल है, वो किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हम अपने कोच के साथ आर्ग्यू कर सकते हैं, हम उसको एक एडवाइस एक सजेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें इस तरीके से करना चाहिए। उसके बाद हम उसको कन्विंस करके फिर उस तरीके से ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको परफॉर्म करना होता है रिंग के अंदर। अगर कोच ने 50 बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग कराई तो उनमें से 50 भी एक भी क्लिक कर गया ना तो कोच का नाम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो लेकिन आपको क्लिक करना जरूरी है, तभी आपका नाम होगा या तभी आप कुछ चीज अचीव कर पाओगे। तो हमें, मैं बॉक्सर से यही एक आग्रह करना चाह रहा हूँ कि किसी भी कोच को, किसी भी लेवल का कोई कोच हो उसको, या मैं हूँ, मैं किसी को बता रहा हूँ इस तरीके से पंच मारना है, तो मेरी बात बिल्कुल भी ना माने। उस चीज को पहले आप कंफर्म कीजिए, पुराने वर्ल्ड चैंपियंस हैं, नए वर्ल्ड चैंपियंस हैं, वो किस तरीके से पंच मारते हैं। अगर वो चीज आपकी कंफर्म होते हैं तो आप उस चीज को फॉलो कीजिए, वरना मत कीजिए।
लेकिन आपके माइंड में जैसा आप बता रहे हो कि खुद से आपको समझना चाहिए, तो आप क्या स्टेज होता है जब आप समझ सकते हो कि आपको इतनी स्किल ट्रेनिंग करनी है या इतनी पेट ट्रेनिंग करनी है या इतना वेट उठाना है या ये एक्सरसाइजेस करनी है।
तो आपको आपको जिस जिस मसल्स की जरूरत पड़ती है, आप जैसे देखो बॉक्सिंग एक अंडर डेवलप्ड स्पोर्ट है, आप फुली फिट हो फिजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली, आप पूर्णतः फिट हो और बाय चांस आपको एक पंच लग गया, आपकी सारी फिटनेस वहीं की वहीं रखी रह जाएगी, आप वहीं की वहीं नॉकआउट हो जाओगे। तो बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जिसके अंदर लास्ट सेकंड तक नहीं पता होता कि भाई आप क्या करोगे, आपका रिजल्ट क्या होगा, लास्ट सेकंड तक नहीं पता होता। तो वो तो आगे अनसर्टेनिटीज की बात है। उससे पहले ये बात है, आप अपनी मसल्स को चेक करोगे, भाई मेरी बाइसेप्स अच्छे तरीके वर्क नहीं कर रही, मेरी बैक मसल्स अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही, क्योंकि देखो सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से होती है, कोचिज सबके लिए अलग अलग शेड्यूल नहीं बना सकते, कोई भी वेट ट्रेनर सबके लिए अलग शेड्यूल नहीं बना सकते। अमेच्योर बॉक्सिंग के अंदर जो ग्रुप्स के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, अब जैसे मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर ट्रेनिंग करके आया तो वहाँ है ना हरेक, जैसे अब मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेनर हायर कर लिया तो ही इज वर्किंग फॉर मी ओनली, ये नहीं कि पूरे ग्रुप के लिए काम करें, तो मेरे लिए मेरी मसल्स की पावर और स्ट्रेंथ वो चेक करेगा और उसके बाद फिर उसी के अनुसार एक्सरसाइज बनाएगा जी। लेकिन अमेच्योर्स के अंदर ऐसा नहीं है, हमें खुद ही ये देखना पड़ेगा, और ये मेनली इसमें टाइम 7-8-10 साल तक लग जाते हैं, जब तक बच्चा मैच्योर होता है वो समझने लायक हो जाता है कि भाई मेरे को किस चीजों की जरूरत है किन चीजों की नहीं। देखिए अभी अभी जो रिसेंटली मैंने जो चीज अपने ढूंढा है, मैं पहले डेडलिफ्ट भी ठीक लगा लेता था, पुशअप्स भी अच्छी तरह करता था, तो मैंने ये सारी चीजें बिल्कुल टेस्ट के अंदर बिल्कुल नॉर्मली करता था मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनसे, और जब तक मेरे हाथ थक नहीं जाते जब तक करता था मैं, ठीक है। लेकिन बाद में मैंने अभी रिसेंटली ये वाली चीज मैंने देखी है, खुद एक कोच ने मेरे को बताया था, रोनाल्ड सिम्स कोच है, IIS
में
जी, बहुत अच्छा कोच है, तो मैं उससे बहुत अच्छा मानता हूँ। तो उसने मेरे को बताया कि भाई हर जो पंच की जो स्पीड है ना, वो स्पीड है वो पावर वो फोर आर्म से आती है।
अच्छा।
तो मैंने इस चीज को रियलाइज किया, उसने मेरे को कहा, उसने मेरे को ये वाली चीज बोली कि मैं बोलूंगा तू मान लेगा, बट प्लीज मानना मत, उस चीज को कन्फर्म कर पहले तो खुद मार के। फिर उसने, फिर मैंने पंच ट्राई किए 10-15 दिन, फिर मेरे को भी रियलाइज हुआ कि जो स्पीड और पावर है फोर आर्म्स से आती है। अब मैं ज्यादातर फोर आर्म्स की एक्सरसाइज करता हूँ, जो मेरे को गार्ड अच्छा बनाने में मदद करती है और पंच में पावर और स्पीड लाने में मदद करती है।
इसके अलावा विकास, क्या आप अपनी डाइट भी माइक्रो मैनेज करते हैं या फिर आप उसको उस पर ध्यान, ऑफकोर्स ध्यान रखते हैं आपकी टीम है, लेकिन आप खुद भी पर्सनली उस पर कितना इन्वॉल्व रहते हैं?
देखो अल्टीमेटली है ना, मुझे परफॉर्म करना है तो मुझे अपनी डाइट का, अपने शरीर का, अपनी ट्रेनिंग का 100% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरे डाइटिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट हाँ, मैं उनसे सजेशन लेता हूँ जब मैं वेट करता हूँ तो किस तरीके से डाइट लेनी चाहिए और नॉर्मल डेज में किस तरीके से डाइट लेनी चाहिए, फिर मैं देखता हूँ कि मेरा शरीर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जैसे अब नेचुरल सी बात है, मैं घर पे आया हुआ और मैं डाइटिशियन से पूछ लूँ, वो बोलेगा 2 रोटी खानी है दिन में, 2 दोपहर को खानी, ये फ्रूट्स खाने, बट यहाँ अब हरियाणा की डाइट इस तरीके से, अब मैं ज्यादा रोटी भी खा जाऊंगा घी के साथ, तो मेरी डाइट उनसे एडजस्ट नहीं होगी। तो इसलिए मैं उनकी बातें भी मानता हूँ, खुद मैं अपनी चीजें भी लगा लेता हूँ उसके अंदर।
लेकिन ऑन एन एवरेज आपका, क्या आप उन चीजों पर ध्यान रखते हो कि प्रोटीन कितने ग्राम्स ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हो?
नहीं, मैं नहीं, इंडिया के अंदर कोई भी स्पोर्ट्समैन इस चीज का ध्यान नहीं रखता।
अच्छा
जी।
तो आप ऑफ कोर्स आपके पास तो टीम है, लेकिन ये अवेयरनेस आपको लगता है चाहिए थोड़े टेक्निक्स में?
देखिए देखिए, ये अवेयरनेस तो कहीं ना कहीं तो देखो चाहिए
जी,
क्योंकि जो डाइटिशियन है वो हमसे ज्यादा जानते हैं
जी,
मतलब मुझसे ज्यादा जानते हैं, और नॉर्मली जो मैं तो उनके कुछ ना कुछ लेवल के हिसाब से मेरे को पता है, जो नॉर्मल जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं जानते, तो उनको मेरे डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, और अपने हिंदुस्तान के अंदर डाइटिशियन थोड़े ज्यादा और वेल क्वालिफाइड डाइटिशियन लाने चाहिए, ताकि जो हिंदुस्तान के खाने को समझ सके उसी हिसाब से बच्चे को खिला सके।
विकास, मैं थोड़ा ट्रेनिंग के गेयर के बारे में बात करता हूँ। ये आप जब ग्लव्स आप सेलेक्ट करते हैं कोई भी बॉक्सिंग के लिए, तो क्या चीज उसमें आप देखते हैं, क्या फील कैसा होना चाहिए उसमें, क्या एक आइडियल ग्लव को आप सेलेक्ट करने में क्या थॉट रहता है आपका?
वो मेरे हाथ के अंदर से ही सेट होना चाहिए, कोई ग्लव बड़ा छोटा हो जाए ठीक है, तो फिर वो अच्छे से हाथ के अंदर सेट नहीं हो पाता, तो फिर आप पंच मारोगे ना तो वो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, जैसे आपने राइट मारा उसको तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, जो आप उसको हर्ट करना चाह रहे हो ना वो हर्ट नहीं होगा उस पंच से। तो इसलिए है ना, आप ग्लव सिलेक्ट करो तो मैं तो उसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं बैंडेज पहन लूंगा, मतलब हैंड रैप्स बांध लूंगा, तो उसके बाद कितना मेरे को आसान रहेगा, कितना मेरे को मुश्किल रहेगा, किस किस हद तक मैं उसको हर्ट कर पाऊंगा, तो ये चीजें मेरे दिमाग के अंदर में रहती है।
आपने हेडगेयर के साथ भी बॉक्सिंग करी है, बिना हेडगेयर के भी करते हैं, तो उसमें क्या फर्क आपको महसूस हुआ, सेफ्टी वाइज आपको क्या ज्यादा बेटर लगता है?
नहीं, हेडगार्ड के अंदर मतलब आपको पंचेस का फियर कम लगता है, आपको ये लगता है कि आप सेफ
जी,
आपने हेडगार्ड लगा, आपने हेडगार्ड लगा रखा है और ये नीचे कप प्रोटेक्टर बड़ा वाला लगा रखा है, तो आप थोड़ा सा सेफ्टी से महसूस करते हो, और पंचेस का असर कम होता है हेडगार्ड के अंदर, जो सिर पे जो पंचेस लगते हैं उनका असर कम होता है, और नॉकआउट परसेंटेज हेडगार्ड के अंदर बहुत कम है
जी। अब ये पिछले 7-8 साल से तो आईबा के एमेचर बॉक्सिंग में भी हेडगार्ड हट गया है मेंस बॉक्सिंग से, अभी मैंने पढ़ा था कि शायद एक मेडिकल कमीशन ने रिकमेंड किया है कि हेडगार्ड वापस आने चाहिए, आपका क्या उसमें टेक है, आप क्या समझते हैं?
क्योंकि अच्छा, देखो मैं आपको बताऊं, बॉक्सिंग मतलब आप बॉक्सिंग इज नॉट अ गेम, ये एक स्पोर्ट्स है और इसको सब लोग नहीं कर सकते, ये बहुत डेंजरस स्पोर्ट है हमको। अब आप नॉर्मल सी बात सुनो, नॉर्मल डेली पंच खाना, मतलब मैं अगले को 10 मारूंगा तो अगला भी तो मेरे को 5-4 मारेगा
जी।
तो नॉर्मल पंच खाना वो भी हेड पे फेस पे, ये इट्स नॉट अ जोक
राइट,
तो है ना, ये हमारी हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट करता है, ब्रेन की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो और मतलब ये नॉर्मली इंजरीज है, मतलब किसी की उंगली चले जाना, हाथ में दर्द हो जाना या एवन फ्रैक्चर हो जाना, क्रैक हो जाना, ये तो नॉर्मल सी इंजरीज है
जी।
तो फिर ये जो ब्रेन की जो मेजर इंजरीज है ना, जो लाइफ अफेक्टिंग
इंजरीज काफी टाइम वो रिटायरमेंट के बाद आपको दिखाई देती है, समझ में?
जी 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 जी, ये पार्किंसन डिसीज जैसी होगी है, और बॉक्सर्स को हमेशा याददाश्त की प्रॉब्लम रहती है, याद में कोई कम रहता है, जिन जिन अच्छे पंच खाए हुए उनको तो बिल्कुल याद नहीं रहता, तो इस चीज के देखते हुए आईवा अभी हेडगार्ड लगा रही है, और मैं इस डिसीजन का, मैं इस फैसले का मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस
जी। अच्छा विकास, आप मैं जानना चाहता था कि हाइट, बॉक्सर की हाइट कितना मैटर करती है बाउट में, आप अगर लंबे हैं छोटे हैं अपने ओपोनेंट के कंपैरिजन में, उसका कुछ फर्क पड़ता है बाउट में?
एक्सेप्शन केसेस हैं इसके अंदर, क्योंकि देखो माइक टाइसन इतना लंबा नहीं थे उनकी हाइट, और फिर भी वो कई साल अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, तो देखो हाइट ऑब्वियसली मैटर करती है, क्योंकि मैं 75 kg के अंदर था, तो या तो सब मेरे बराबर थे या सब मेरे से बड़े थे, और अब मैं 6'10" के अंदर हूँ, तो या तो मेरे बराबर है या मेरे से छोटे हैं, तो देखो मैटर तो करती है, आपको कोई छोटा लगेगा तो आप भी साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ये हो जाओगे, हाँ ये मैं छोटा इसको मैं मरा लूंगा, तो काफी मैटर करती है।
और आपके जैब्स में अगर किसी को पावर बढ़ाना है या पावर मैक्सिमाइज करना है, उसका क्या आइडियल टेक्निक होना चाहिए? विकास, अगर आपको लगता है कि आपके जैब में इनफ पावर नहीं है, एक तो फोरआर्म एक्सरसाइज ऑफ कोर्स वो एक तरीका है, लेकिन जिस टेक्निक से आप मारते हैं, जिस एंगल से मार रहे हैं, उसका कुछ आप बता सके तो?
देखो अगर जो बिल्कुल सही टेक्निक से मारेगा तो जैब भी पावर कैरी करता है, मेरा जैब बहुत हार्ड है
जी।
क्योंकि मैं खुद ये मानता हूँ, आज के दिन मतलब 2-4 केसेस 1-2% को छोड़ के आज तक जितने भी वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं ना, उनका जैब बहुत अच्छा था, मोस्ट ऑफ द बॉक्सर्स का जो है बहुत अच्छा था जो वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं, तो इसलिए मैंने जेब पे वर्क किया। और आप जहां तक पावर की बात करें, आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी जेब की। जब आप एक लेवल पे जाके आप उसमें मास्टरी और परफेक्शन ले आओगे तो वही पावर से लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये है, आप कितने विलिंग हो उस चीज को बढ़ाने के लिए। मेनली लोग क्या है इंडिया के अंदर, मेनली लोग जेब्स पे काम ही नहीं करते हैं। मेरे को एक अपने कोच हैं चिरंजीवी सर, उन्होंने मेरे को 2010 के अंदर ट्रेनिंग कराई थी, जैब 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 ओनली जैब कराते थे मेरे को। और व्हेन आई वाज गोइंग फॉर द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स तो उन्होंने बोला था तू चैंपियन होएगा इस कंपटीशन के अंदर।
अच्छा,
मतलब एवरीवन वाज वेटिंग फॉर मी टू लूज, क्योंकि उनको जैब का मीनिंग नहीं पता था।
जी।
तो फिर सब मेरी वेट कर रहे थे कि कब आएगा और तो हम इसको बता पाएंगे कि भाई हुक्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट स्ट्रेट अपरकट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन जैब के लिए किसी ने मेरे साथ एग्री नहीं किया, बट लेकिन मैंने उस कोच पे बिलीव किया और फिर उसके बाद मैं ही अकेला इंडिया का वर्ल्ड चैंपियन बना उस साल। तो यू नो, आपको देखो किसी पे बिलीव करना पड़ेगा। और जैब तो बॉक्सिंग के अंदर हम स्टार्टिंग करेंगे तो हमें जैब सिखाएंगे, ये नहीं कि वो आथागे है, ये इसलिए कि वो सबसे जरूरी पंच है।
जी, तो एक तो बहुत सबसे बेसिक आप सही बोल रहे हैं, बॉक्सिंग कोई भी शुरू करता है सबसे पहला पंच शायद उन्हें जैब ही सिखाया जाता है, लेकिन वो आगे चल के भी इतना इम्पोर्टेंट रहता है या पूरे करियर में आपको काम आता है।
और इसमें जैब एक तरीके का एबीसीडी से रिलेट करूंगा इसको, मैं 1 2 3 काउंटिंग से रिलेट करूंगा। आप कितनी ज्यादा कितनी बड़ी स्पेलिंग लिखो, आपको एबीसीडी जरूर याद होनी चाहिए, जब भी आप एबीसीडी अच्छे लिख पाओगे। और आपको कितना ही बड़ा कैलकुलेट करना हो, कितना बड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो, आपको 1 2 3 तो यूज होगा ना उसमें। तो जैब ये है, आपको कोई भी कॉम्बिनेशन सेट करना है तो उसमें जैब सेट करेगा आपके लिए कॉम्बिनेशन। डिफेंसिव टेक्निक्स को यूज करनी है तो जैब आपको अच्छी तरह करवाएगा वो चीज। और ये पुराना कोट है, ए फास्ट जैब इज अ बेस्ट फ्रेंड, फास्ट जैब इज अ बेस्ट फ्रेंड एंड ए स्लो जैब इज योर एनिमी। जी,
तो ये हैंड स्पीड का कितना बड़ा रोल होता है विकास बॉक्सिंग में या फिर आपके जैब को और स्ट्रॉन्ग बनाने में?
देखो ये बॉक्सिंग के अंदर पुरानी एक कहावत है, जैसे स्पीड किल्स पावर,
ओके,
टाइमिंग किल्स स्पीड। तो स्पीड पावर से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पीड से मारेंगे तो हम अगले के हाथ नहीं आएंगे। उसके बाद सेकंड चीज है टाइमिंग, उसको हमारे पंच के अंदर टाइम करना पड़ेगा, जैसे मैं मार रहा हूँ उसके साथ मारना पड़ेगा, जैसी कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी जिससे वो मेरे साथ मारे, तो फिर टाइमिंग का रोल है। तो हर चीज का बॉक्सिंग के अंदर एक इक्वल रोल है। किसी भी एक क्वालिटी की वजह से आप कहीं भी मेडल जीत सकते हो, किसी भी एक बैड क्वालिटी की वजह से आप कहीं भी आ सकते हो। तो बॉक्सिंग इतना अनसर्टेनिटीज का गेम है, आपको पता नहीं चलता आप किस चीज से जीत गए, किस चीज से हार गया।
जी। ये जो इम्पोर्टेंस रहती है फुटवर्क की या मतलब पूरे रिंग में घूमते रहने की, वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए?
देखो मैं बताता हूँ, देखो जैसे हम बॉक्सिंग को एक निशाना मारने सी चीज से रिलेट करते हैं, जैसे कोई चीज आपके सामने है तो आप उसको आराम से निशाना मारोगे, और घड़ी घड़ी हिल रही है, जैसे उसका पेंडुलम हिलता, अगर आप वो हिल रहा है तो आपको निशाना मारने में प्रॉब्लम होगी। यही बॉक्सिंग से रिलेटेड इसको कर लो आप, कि भाई आप अगर एक जगह स्टिफ जगह से खड़े हो आप, तो आप पंच का आपका टारगेट बिल्कुल क्या है सेम पोजिशन पे है, और आपको पंच लगने ज्यादा चांस है, आप उनको ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा हिलते रहोगे, साइड स्टेप फुटवर्क करते रहोगे, तो अपोनेंट को उतना ही मुश्किल हो जाएगा, सेम निशाना मारने वाली बात है।
अच्छा विकास जी, आप जैसे काफी बार होता है कि बॉक्सिंग में आप ओपोनेंट ने आपको रोप पे ढकेल दिया, रोप की तरफ ढकेल दिया, अब वहां से अगर आपको निकलना है तो हमने एक फेमस मोहम्मद अली की टेक्निक थी रोप और डोप, तो वो रोप पे जैसे पीछे की ओर लीन करके फिर वो पंचेज एब्जॉर्ब करके फिर वापस सामने वाले को थका के मारने का, ये टेक्निक आप एंडोर्स करते हैं? आपको लगता है कि ये एक वन ऑफ चीज है?
अमेच्योर के अंदर ये चीजें सिर्फ बहुत कम होंगी, और जो होंगी वो सिर्फ थर्ड राउंड के अंदर होंगी।
जी।
जो मैंने अभी भी की थी, जो मैंने इस कम्पिटिशन के अंदर भी की थी, मैं लास्ट राउंड में तीन फाइट्स हुई थी मेरी ओलंपिक क्वालिफिकेशन में अभी।
जी।
तो जब मैंने तीनों फाइट्स के अंदर लास्ट राउंड के अंदर मैं रोप पे गया था, सिर्फ यही देख के कि भाई मैंने अपोनेंट को बिल्कुल लूज कर दिया, अब मैं रोस्ट पे जा रहा हूँ ताकि सबको दिखे कि भाई ही इज कॉन्फिडेंट टू। और जब हम रोस्ट पे जाते हैं तो अपोनेंट को कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई अब ये फंस गया है, अब ये कहीं नहीं बच सकता। इस टाइम आप थोड़ा सा लीन करोगे तो उसके पंचेज आप खाली निकलवा दोगे, आप उसको हार्ड शॉट मार सकते हो।
इस केस में आपको डिफेंस भी ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपको एक
क्योंकि रोप पे जाने के बाद रिस्क भी है अपोनेंट, एक तो अपोनेंट पूरी पावर से मारेगा
जी,
और आपके पास पीछे जाने के लिए भी कहीं जगह नहीं अगर आपके पीछे रोप से तो
जी,
तो आपको आपको आपका डिफेंस सटीक होना चाहिए इस चीज के लिए।
तो विकास, हमने लास्ट टाइम तो बात करी थी तो आपने प्रोफेशनल और एमेच्योर के ऊपर काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्या डिफरेंस है, लेकिन आपने तब एक चीज बताई थी कि प्रोफेशनल में जो एक किलर इंस्टिंक्ट होती है वो शायद एमेच्योर में नहीं होती है। जब आप एमेच्योर से प्रोफेशनल में गए थे और ये इंस्टिंक्ट आपने वहां पे बाकी बॉक्सर्स में देखी होगी, तो आपको वो चीज अडेप्ट करने में कितना वक्त लगा और कैसे, मतलब व्हाट वाज दैट प्रोसेस?
अभी है ना, अभी अभी टोटली तो मैं उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एक एक हमारा हिंदुस्तानी ब्लड ही ऐसा है कि भाई किसी को हार्ड पंच लग गया तो हम भी थोड़ा सा ही सोचते हैं कि भाई लग गई अब तो बस एक सा रहना चाहिए उसको, नहीं
जी।
बट वहाँ उनमें ये है, वो अगर एक बार हिट कर देते तो आपके लिए दोबारा आते हैं आपको गिराने के लिए, तो उनके अंदर ये वैसे बायबोर्न तो है ही, जो जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके अंदर ये बायोपोर्टल तो है ही, बट फिर भी अभी तक मैंने इसको काफी हद तक अडॉप्ट किया है मैच्योर के अंदर, अभी चीज को अच्छे तरीके से प्रो में करूंगा, अभी मैं 2-3 फाइट्स और लड़ने वाला हूँ ओलंपिक से पहले, तो उसके अंदर मैं अडॉप्ट करूंगा।
अच्छा, ये कॉम्बिनेशन पंचेस के बारे में बताइए, उसके पीछे क्या साइंस होती है? अब जैसे 1-2 कॉम्बिनेशन है, आप कितने पंचेस एक कॉम्बिनेशन में डालते हैं या कौन से पंचेस उसमें डालना है, उसका क्या थॉट प्रोसेस होता है, क्या देख के आप ओपोनेंट को देख के करते हैं या अपनी स्ट्रेंथ देख के करते हैं, कैसे उसका थॉट होता है?
देखो अमेच्योर के अंदर जिस तरीके से हम कम्बिनेशन चूज कर रहे हैं, जैसे सपोज मेरे को हुक मारना है
जी,
तो मैं खाली हुक मारूंगा तो अपोनेंट को पता लग जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले 1-2 मारूंगा
जी,
और उसके बाद मैं हुक मारूंगा ताकि 1-2 से उसका फेस थोड़ा खाली हो जाए, उसके बाद उसको लग जाए
जी।
पर प्रोफेशनल में थोड़ा दूसरे तरीके कम्बिनेशन होते हैं, प्रोफेशनल में तो वो मशीन हो जाते हैं, वो कॉम्बिनेशन उसी कॉम्बिनेशन हैबिट हो जाती है, चाहे आपका गार्ड पे है या नहीं है, और एक उनकी आई सेटिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है, उनको जहाँ पेट में दिखा तो उस टाइम जैसे हमने सोचा ना 1-2 हुक मारेंगे, अगर उसका हुक ऊपर है तो वो अपरकट मार देंगे उसकी जगह, तो उनकी आई सेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अमेच्योर के अंदर हम बेसिकली कोई कॉम्बिनेशन मारते हैं ना तो लास्ट पंच के लिए मारते हैं, जैसे मेरे को अपरकट मारना है तो पहले मैं राइट मारूंगा ताकि मैं उसको राइट मारने के ताकि उसका फेस पे गार्ड अप हो जाए, ताकि मैं उसको अपरकट नीचे मार सकूं
जी।
तो अमेच्योर के अंदर हमारी ये स्ट्रेटजी रहती है
जी। आपका विकास कोई फेवरेट स्ट्रोक या कोई फेवरेट शॉट है रिंग के अंदर जो आप चाहते हैं कि स्पेस बना के एंगल बना के वो शॉट आप ले पाए?
देखिए अभी जो आपने मोहम्मद अली की जो टेक्निक वाली बात की, अभी मेरे दिमाग पे वही चढ़ी हुई है।
अच्छा।
और मैंने दोनों कॉम्पिटिशन के अंदर वो ट्राई की, एक सेफ गेम्स के अंदर एक इसके अंदर, तो मैं उससे काफी हद तक सेटिस्फाई हूँ। मतलब वो हम ये दिखा सकते हैं कि देखो ही इज यूजिंग एन आर्ट। जैसे अब मैं रोप पे गया, उसने मारे, मैंने 4 पंच उसके खाली निकलवा दिए, 4 पंच मैंने स्लिप करवा दिए, उसके बाद मैंने उसको हार्ड मारा, तो मैंने उसके पंच भी खाली निकलवा दिए और अपना भी शॉट मारा उसके ऊपर। तो ये वाली चीज आज के दिन में करने की कोशिश कर रहा हूँ
जी। बिकॉज आपका डिफेंस मतलब शुरू से ही अच्छा रहा था, तो ये आपको लगता है कि ये पंचेस को अब्सॉर्ब करने की आर्ट है, इसको इनफ अप्रिसिएशन मिलता है? और
ऐसे तो मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसे करवाता हूँ, लेकिन हरेक की अपनी अलग अलग टेक्निक्स होती है, उस एंगल के अंदर खड़ा होना है।
Okay.
मतलब हरेक को जैसे जिस तरीके मैं एंगल बताऊंगा उस तरीके में हर एक बॉक्सर अच्छे से कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेगा, अच्छे से कंफर्टेबल नहीं होगा। तो मैं बेसिकली जो एंगल बनाता हूँ, जिस एंगल से मैं खड़ा होता हूँ, जो रेंज फाइंडर होता है मेरा, मतलब मैं जैब मारूंगा ताकि उसकी रेंज फाइंड कर लूं, उससे पहले जैसे मेरे को रोप्स में जाके टेक्निक करनी है तो उससे पहले मैं उसके बहुत सारे पंचेस मिस करवाऊंगा रिंग के बीच के अंदर ही। जब मेरे को कॉन्फिडेंट हो जाएगा, मेरे को कॉन्फिडेंस महसूस होगा, उसके बाद ही मैं कॉर्नर्स में जाके करूंगा। मैं ये नहीं कि मैं जाते ही फर्स्ट राउंड के अंदर ये काम कर दूं, नहीं, फर्स्ट राउंड उसको एनालाइज करूंगा और अपनी नॉर्मल बॉक्सिंग खेलता रहूंगा, उसके बाद फिर सेकंड राउंड के लास्ट में नहीं तो थर्ड राउंड के अंदर मैं टेक्निक करूंगा
जी। अच्छा विकास, ये मैं एक साइंस जर्नल पढ़ रहा था बॉक्सिंग के ऊपर, उन्होंने लिखा था कि जितना फोर्स आपको बॉडी में लगता है खड़ा रहने के लिए, उससे ट्रिपल फोर्स लगता है एक हुक शॉट में। मतलब जैसे आपने एक हुक मारा तो सामने वाले के सर पे उसका ट्रिपल फोर्स जा रहा है, तो
क्योंकि हुक आउट ऑफ द विजन आता है
जी,
हुक स्ट्रेट पंच नहीं है, स्ट्रेट तो जैसे हमने सीधा मारा, हुक आउट ऑफ द विजन आता है। और ऐसा नहीं है कि भाई हुक ज्यादा पावरफुल है स्ट्रेट कम है, मैं इस चीज को नहीं मानता। हुक भी उतना ही पावरफुल है स्ट्रेट पंच, अगर आपने सही टेक्निक से मारा तो स्ट्रेट आपका जैब भी उतना ही पावरफुल हो सकता है हुक के जैसा।
विकास, लास्ट सवाल आपसे था कि अगर कोई नए बच्चे बॉक्सिंग लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे, फिजिकली या मेंटली कैसे प्रिपेयर रखें अपने आपको?
सबसे पहले तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं बनी जो एक दिन में किसी को चैंपियन बना सके, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं बहुत सारे जैसे गंदे इंसान है दुनिया के अंदर जो बच्चों को बरगला देते हैं, और बॉक्सिंग बॉक्सिंग के नहीं हर एक स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे हैं कि भाई आप एक दिन में ये खाओ आप इतना जल्दी भाग जाओगे, 5 दिन आप ये खाओ, 2 साल आप ये खाओ, आप चैंपियन बन जाओगे। चैंपियन सिर्फ मेहनत से ही बना जाएगा, इसका दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है, हार्ड वर्क के अलावा इस चीज का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। किसी को सक्सेस जल्दी मिल जाता है, किसी को सक्सेस लेट मिलता है, बस इतना सा ही फर्क है बस।
So that was Vikas Krishan with his rather exhaustive masterclass on boxing. Hope you enjoyed listening to it. And don't forget to tune in next Monday when we sit with another athlete for yet another round of masterclass. Until then, stay safe and goodbye.